ओम शांति। तो आज हमारा अमृत वेला का लास्ट सेशन है। अभी तक हम सबने अमृत वेला के बारे में बाप दादा की दिव्य शिक्षाएं बुक से पढ़ा और अलग अलग रूप में सबने विस्तार किया उसका। तो हमने देखा था कि अमृत वेला उठने पर क्या क्या समस्या आती है, अमृत वेला का समय कितना इम्पोर्टेंट है, अमृत वेला करना क्यों इम्पोर्टेंट है, और भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों के पोज अमृत वेला, और कैसे कैसे बच्चे उलाना देते हैं अमृत वेला, अमृत वेला को शक्तिशाली कैसे बनाए, अमृत वेला क्या क्या अलग प्रकार की नवीनता लेके आ सकते हैं हम, ये सब हमने लास्ट इतने दिनों में देखा। तो आज हमने ये बुक अमृत वेला से कुछ पॉइंट सिलेक्ट किए, वो हम पढ़ेंगे और उसका विस्तार करेंगे। तो इसका मुख्य हेडिंग है अमृत वेले पिछले दिन का प्रभाव और स्वयं की चेकिंग। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें रात्रि को देर तक जागरण करना। तो बाबा ने इसमें कहा है कि आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना, और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है या अमृत वेला सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे करते हैं, सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेला को छोड़ देंगे। तो मजा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं, एक तरफ सेवा की, दूसरी तरफ अमृत वेला मिस किया, तो क्या हुआ? लेकिन नेमिनाथ मुआफिक ऐसे झुटका खाते नहीं बैठना। बाबा कहते हैं वह टीवी बहुत अच्छी होती है, जैसे ये योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हो जाते हैं, सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। बाप दादा के पास वह भी कैसेट है, तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। तो बाप दादा विशेष कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई एक सेवा करते हैं उसमें इतना बिजी हो जाते हैं दिन भर में, या रात तक जागते हैं और फिर ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे अमृत वेला मिस करते हैं। एक बार जयंती बहन हॉस्पिटल में क्लास लिया था उन्होंने, तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था कि जब ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस बन रहा था तो उन लोगों को बहुत सेवाएं होती थी और वो लोग रात के 11-12 बजा देते थे वो सेवा करते हुए। तो फिर अमृत वेला उठ तो जाते थे, लेकिन वही होता था कि इतना शक्तिशाली नहीं होता था। तो बाबा ने उनको डायरेक्शन दिया कि भले एक घंटा जल्दी सो जाओ पहले, और फिर अमृत वेला टाइम पर उठकर शक्तिशाली करो, तो देखना कि जो सेवा आप दिन भर में करोगे वो डबल होंगी। तो उनका भी अनुभव ऐसे ही है कि अगर हम टाइम सेव करें, मतलब जल्दी सो जाए और फिर सुबह में हम उस सेवा को टाइम दें, तो ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, काम करने का समय निश्चित होना चाहिए। कई समझते हैं रात को जागकर काम करते तो अच्छा काम होता, लेकिन बुद्धि थक जाती है, और अमृत वेला शक्तिशाली ना होने के कारण जो कार्य दो गुना होना चाहिए वह एक गुना होता है। इसलिए टाइम की लिमिट होनी चाहिए, फिर सवेरे उठकर फ्रेश बुद्धि से पढ़ाई पढ़ना है। काम करने की लिमिट होनी चाहिए। ऐसे तो बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी हद तो देनी पड़ती है ना। सदा बुद्धि फ्रेश रहे, और फ्रेश बुद्धि से जो काम होगा वह एक घंटे में दो घंटे का काम कर सकते हो। तो बाबा वही कह रहे हैं, अगर बुद्धि फ्रेश होगी तो दो घंटे का काम एक घंटे में होगा। जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा रुकावट करने के निमित्त होती है, क्या कह रहे हैं, जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो 12 व 1 बजा देते हो तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा, बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। ये तो हम सबका एक्सपीरियंस है कि अगर अमृत वेला शक्तिशाली नहीं होता तो दिन भर में उसका असर हमको दिखता ही है। अगर कोई विघ्न भी आता है तो हम उससे उतना अच्छी रीति से उसको फेस नहीं कर पाते। माना सेवा के प्लान बनाने में और सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही एक घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर शरीर को हम रेस्ट नहीं देते तो फिर बुद्धि फ्रेश नहीं रहती मॉर्निंग में, इसलिए नींद आती है बहुत मॉर्निंग में। और अगर हम दिन भर में सेवा भी कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि बाबा की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर निमित्त भाव नहीं है और अगर बहुत मैपन है उस सेवा में और किसी को अगर दुख दे दिया सेवा में, अगर कोई टक्कर हो गई तो भी ये सुख, और हम सोचेंगे कि जैसे कि अच्छी तो सेवा तो की, बाबा की तो सेवा की, फिर अमृत वेला क्यों अच्छा नहीं। लेकिन ये सूक्ष्म चेकिंग करेंगे तो पता चलेगा कि हमने कितने विकर्म किए दिन भर। तो यही पॉइंट है यहाँ पर भी। और दूसरा शरीर को रेस्ट देने की बात है। कई बार हम नींद आने के कारण ढूंढते हैं अमृत वेला, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लेकिन अगर आपने बॉडी को रेस्ट ही नहीं दिया तो फिर भी अमृत वेला नींद आएगी। जैसे कई कई लोगों को देखते हैं ना, वो सोते रहते हैं, उनको पूछो कि अरे आप इतना थोड़ा रेस्ट दो ना अपने आप को, क्यों इतना सो रहे हम बैठ के है ना योग में, तो कहते हैं कि हम अपने विकर्म विनाश कर रहे। लेकिन ऐसे विकर्म विनाश नहीं होते नींद में। तो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है हमारे लिए सोचने का, ये हमने शायद विस्तार नहीं किया ये सीरीज में, कि अमृत वेला नींद आने के क्या क्या कारण होते। तो अमृत वेला नींद आने के क्या क्या कारण होते, तो जैसे कि जैसे यहाँ पर बाबा ने कहा कि अगर दिन भर कोई फिजिकल सेवा अगर हम बहुत कर रहे हैं और रेस्ट नहीं दिया तो नींद आएगी। नेक्स्ट अगर कोई मेडिसिन ले रहा है कोई, उसकी वजह से उसको नींद आ सकती है। और जैसे कि अगर कोई विकर्म किया दिन भर में तो माया बदला लेगी अमृत वेला। और जैसे कि अगर भोजन भी एक ऐसी चीज है कि अगर बहुत ज्यादा भोजन खाया रात में तो अमृत वेला उसका असर होता है। जैसे अभी कितने सारे फंक्शंस थे तो इस चीज को हमने क्लोजली एक्सपीरियंस किया कि जिस दिन सेवा होती थी रात में और लेट भोजन होता था तो डेफिनेटली अमृत वेला उतना शक्तिशाली नहीं होता था, क्योंकि कभी कभार हमारी आदत हो गई थी कि हम बहुत जल्दी भोजन कर रहे थे, लेकिन उस दिन जिस दिन सेवा रहती थी उस दिन लेट खाना पड़ता था तो उस दिन अमृत वेला उतना मजा नहीं आता था, उतना शक्तिशाली नहीं होता है। तो भोजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे अगर हम कोई, हमारे यहाँ पे कोई फेस्टिवल है, कोई फंक्शन है, तो जरूरी नहीं है कि हमको सब कुछ खाना है ना। हम सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें से कि हमको क्या खाना है, पूरा कि पूरा खाने के लिए किसी ने हमको फोर्स नहीं किया है। तो क्योंकि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये हमको देखना है, तो भोजन पे बहुत बहुत ध्यान देना है। तो अमृत वेला ये सारी चीजों पर ध्यान देंगे हम, अगर नींद आ रही है तो इसके ये कारण होंगे। तो जैसे कि अगर नींद आ रही है अमृत वेला, सब कुछ अच्छा कर रहे फिर भी नींद आ रही है अमृत वेला, उठ गया कोई, तो क्या करना चाहिए? घूमना चाहिए, टहल के भी याद कर सकते हैं, और पढ़ सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, गुल्ला उल्ला करके बैठो, स्नान पानी करके बैठो, तो गीत सुने, कमेंट्री सुन सकते, गीत सुन सकते, कान में लगा के भी सो जाते। हाँ, कभी कभार नींद का ऐसा प्रकोप होता है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है। तो हम इस पे कुछ सोच रहे थे कि क्या करें आखिर, अगर सब कुछ हम अच्छा कर रहे हैं दिन भर लेकिन अगर रेस्ट नहीं मिला किसी कारण से तो अमृत वेला डेफिनेटली नींद आने वाली है। तो जैसे कि कहा, सबसे पहले स्नान करके आ सकते हम, ऐसे भी अमृत वेला स्नान करके आना चाहिए, बाबा ने बोला है एक मुरली में, तो स्नान करके आओ। लेकिन एक बहन ने कहा था कि हमारा तो उल्टा ही है, जैसे हम स्नान करते हमको नींद अच्छी आती है, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो जैसे कि जब स्नान, ये हमने साइंटिफिक रीजन ढूंढे थे इसके, कि जब
स्नान करने जाते हैं तो 5-7 बाल्टी निकालनी पड़ती है, जल्दी उठते हैं, 4 लोग को डिस्टर्ब होता है, वो भी होता है।
ये भी देखो कारण है कि 5-7 बाल्टी निकालनी पड़ती है तो दूसरों को डिस्टर्ब होता है।
नहीं, जब कमरे में जाते
हैं, हाँ वही,
कपड़े लेंगे तो वो
तो दूसरों को डिस्टर्ब होता है। अच्छा है ना, दूसरे भी अमृत वेला उठेंगे तो
कहते हैं अभी आप बंद करो।
ठीक है, सबके साथ ये प्रॉब्लम तो नहीं होंगी, तो स्नान कर सकते हैं अमृत वेला। तो उसमें साइंटिफिक रीजन हम बता रहे थे कि जैसे वो बहन ने बोला था ना कि हम जैसे ही स्नान करते हैं तो हमको नींद आती है, तो हम सोच रहे थे ऐसा क्यों। तो बताया गया है कि अगर हम बहुत गर्म गर्म पानी से नहाते हैं ना तो डेफिनेटली कोर टेम्परेचर कम होता है और है ना नींद आती है। तो उसमें कहते हैं कि जब लास्ट के फ्यू सेकेंड बजे होते हैं ना स्नान के, तो पानी को थोड़ा ठंडा कर देना चाहिए और है ना स्नान करना चाहिए, तो नींद उड़ जाती है उसमें, ऐसे बताते हैं। और जैसे कहा कि ब्रशिंग व्रशिंग करके ही आना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस उठ गए और आ गए और बैठ गए। कहीं ऐसे भी होते हैं जो जस्ट उठ जाते हैं और आके बैठ जाते हैं अमृत वेला, कोई मतलब रेडी नहीं होते। जैसे अमृत वेला कैसे हमारी बाबा से मुलाकात है ना, तो जैसे किसी और से मुलाकात होती है किसी बड़े से, तो हम कितने अच्छे से जाते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर भी उस तरह से आना चाहिए।
ऐसा होता है कि हम ये तैयार होंगे तो अमृत वेला चला जाएगा,
तो वो टाइम सेट करना चाहिए कि कितना टाइम हमको लगता है तैयार होने में और हम आ सकते हैं अमृत वेला। दूसरा जैसे कहा कि चिंतन, एक मुरली में बाबा ने कहा है कि बच्चे है ना विचार सागर मंथन करो। साकार मुरली में पॉइंट आते बाबा के कि अमृत वेला उठ विचार सागर मंथन करो। तो कभी कभार जब हमको नींद आ रही होती है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी एक पॉइंट लेके 10 मिनट उस पर चिंतन करना चालू करें। जैसे यहाँ पे हम सबको कुछ ना कुछ होमवर्क मिल ही जाता है, तो क्यों ना हम उसी होमवर्क को हर अमृत वेला यूज कर सके जब भी हमको नींद आए, तो उस पॉइंट पे कुछ सोचना चालू करें, तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स याद आएगी उसके रिलेटेड, बाबा ने अभी तक क्या कहा है वो सोचे। या दूसरा ऐसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है तो आने से पहले, अमृत वेला आने से पहले मुरली का वरदान और स्लोगन पढ़ के आए, और मुरली का वरदान और स्लोगन भी अगर हमने पढ़ लिया तो हमारे पास कुछ एक बेस होता है कि हम इस पे चिंतन कर सकते हैं। तो उस पे चिंतन करना चालू करें और फिर बुद्धि फ्रेश हो जाती है एक्चुअली चिंतन से, और फिर नींद नहीं आती, वो कर सकते हैं। तीसरा हमने सोचा कि जैसे यहाँ पे चार धाम है ना, हमने कहा कि घूमते फिरते योग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे आपको एक घंटा बैठना है, तो हम चारों धाम पर जा सकते हैं 7-7 मिनट या 10-10 मिनट, और कुछ ना कुछ हमको पहले से प्लानिंग करें कि हाँ हम 5-10 मिनट ये करेंगे इस स्थान पर, 10 मिनट ये करेंगे, तो वैसे भी है ना नींद नहीं आएगी। जैसे शांति स्तंभ पे पहुंचे तो शांति स्तंभ पे आप चारों स्तंभ पर 2-2, 3-3 मिनट भी दोगे तो 8-10 मिनट होता है, तो वैसे तो कैलकुलेटिव हमने सोचा कि क्या एक्चुअली करना चाहिए। अगर नींद मतलब सोना नहीं है उस वक्त को बहुत अच्छे से यूज करना है तो वैसे कर सकते हैं, फिर हिस्ट्री हॉल में बैठ जाए, फिर मेडिटेशन हॉल में बैठ जाए या आंगन है उसमें बैठ जाए और उस तरह से करें। फिर हम सोच रहे थे जो बाहर रहते हैं उनके लिए क्या सोचे, उनके पास तो चार धाम नहीं है घर में, वो तो योग है ना, तो वो लोग फिजिकल लेवल पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिस स्थान पर हम सो रहे हैं उधर ही उठ के बैठ के डायरेक्ट योग नहीं चालू करना है, है ना। अगर किसी का घर बड़ा है या बाबा का रूम है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो जिस स्थान पर हम सो रहे हैं उसको उठ के स्थान चेंज करना चाहिए, या तो कोई चेयर पे बैठ जाए या हॉल में चले जाए, लेकिन जिस स्थान पर हम सोते हैं अगर उधर ही बैठ के हम योग करना चालू करें तो डेफिनेटली नींद आएगी। नेक्स्ट ये बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम ऐसी जगह पे जाके योग ना करें बैठ के जहाँ पे आजू बाजू भी लोग सो रहे हैं, तो वो भी बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि वो वाइब्रेशंस भी हमको आते हैं। तो आपको जब पता है कि ये बहन या ये भाई बहुत ज्यादा सोते हैं तो अवॉइड करें उस प्लेस को, फिर आपको ऐसी प्लेस ढूंढनी पड़ेगी कि जहाँ पर ठीक से आपका योग लगे। और जैसे है ना हमारे हॉस्पिटल से हम लोग यहाँ पे आते हैं ना, तो हमने कुछ भाई बहनों को देखा, जब तक हमारा ड्राइवर नहीं आते तो वो लोग वॉकिंग करते रहते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे भी करते हैं, वॉकिंग करते हैं। एक भाई तो लिटरली एक्सरसाइज करते पूरी, भागते हैं और कुछ कुछ करते हैं वो, तो उससे भी वो फ्रेश हो जाते। तो ये कुछ हमने सोचा कि ऐसे जाग सकते हैं अमृत वेला और नींद नहीं आए हमको और किसी को कुछ पॉइंट बताने अगर नींद आए तो? हाँ वो पढ़े वो तो है। हाँ कुछ अगर कुछ पढ़ के नहीं आए हैं, एक्चुअली पढ़ के आए तो बहुत अच्छा, तो भी है ना बुद्धि रिफ्रेश हो जाती है। नहीं आए तो उठ लो पढ़ लो, कुछ रखो अपने पास हमेशा जिसको पढ़ के फिर है ना बुद्धि एक्टिव हो जाए। और जैसे कहा कि कमेंट्री या म्यूजिक लगा के भी है ना, यहाँ पे तो हमको मिल जाता है, म्यूजिक बजता है, गीत बजता है, जो लोग बाहर रहते हैं उसको अलग अलग तरह से कर सकते हैं कि आज हम कमेंट्री पे योग करेंगे, आज खुद से योग करेंगे, आज गीत लगा के कुछ ना कुछ नवीनता लानी पड़ेगी तो बोर नहीं होंगे। और है ना फिर म्यूजिक बजा के कर सकते हैं। दूसरा कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक ही स्थान पर जब योग करते हैं ना बहुत टाइम तक, तभी भी बोर होने लगता है और तभी भी सुस्ती आने लगती है। तो कभी कभार 15 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार अपनी प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वही स्थान पर बैठ के अमृत वेला करना है, बहुत लोगों का फिक्स है वो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नींद आ रही है तो उठ के अपनी प्लेस चेंज कर ले तो वो भी एक चीज हेल्प करेगी। हाँ बुद्धि से चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। और क्या डाल के बैठे? हाँ जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर नींद आती है तो आँख में तेल डाल दो, तेल आँख में तेल डालो, है ना, इसमें है ये इसमें भी है ये बुक में। और एक बार है ना हमने सुना था, हाँ मम्मा है ना क्या करती थी, बच्चों को अगर नींद आती थी उनकी चोटियाँ ऊपर बांधती थी और अगर नींद आई तो ऐसे होता था। तो हम तो वैसे नहीं करेंगे, तो ऐसे कुछ कुछ अपनी छोटी छोटी बात। हाँ पीस ऑफ माइंड पर भी डायरेक्ट आता है, तो अगर जो घर में रहते हैं वो चालू कर सकते हैं पीस ऑफ माइंड, और विजुअलाइजेशन के थ्रू उनका मेडिटेशन हो सकता है, और उसमें भी वो लोग म्यूजिक और गीत सब कुछ बजाते हैं तो मन एक्टिव हो जाएगा अगर इतना सब करेंगे हम तो। और कभी कभार प्लानिंग करके बैठना होता है, अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे ना तो बुद्धि यहाँ आ जाएगी या सुस्ती आएगी, तो प्लानिंग की हाँ अब मुझे जाके 10 मिनट ये करना है, 10 मिनट ये करना है, 10 मिनट ये करना है, जैसे मुझे 5 स्वरूप का अभ्यास करना है 3 बार, फिर मुझे सूक्ष्म वजन में जाके जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि वो 7 प्रैक्टिस करनी है, फिर हमको सकाश देनी है, फिर बीज रूप स्थिति, जैसे नींद जब आ रही है तो बीज रूप स्थिति का अभ्यास तो बहुत कम होगा, नहीं होगा, क्योंकि लोग जैसे यहाँ पे भी बाबा ने कहा है कि निंद्रा को भी एकदम फ्रेश, उससे भी फ्रेश हो जाते हैं तो समझते हैं कि बहुत शांति का अनुभव किया, तो तभी बीज रूप स्थिति का अभ्यास करने का टारगेट ना रख के ये सारी चीजें कर सकते हैं। चार धाम की यात्रा अगर बाहर है हम तो बुद्धि से चार धाम की यात्रा, 5 स्वरूप का अभ्यास, सकाश देना, ये सब कुछ कर सकते हैं। और कमेंट्रीज पर भी कितनी अच्छी अच्छी कमेंट्रीज दी हुई है तो उस पर भी हम योग कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अगर नींद आ रही है तो क्या करना है, और भोजन पे बहुत बहुत ध्यान देना है, और ब्राह्मण जीवन एक्सपेरिमेंट्स है जैसे बाबा ने बोला ना, ये प्रयोगशाला है शांति की प्रयोगशाला जैसे लास्ट, तो यहाँ पर भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स करके देखो कि अगर हम भोजन जल्दी खाए तो क्या होता है अमृत वेला, अगर हमने कुछ और खाया, अगर दूध और फल ले लिए सिर्फ रात में तो क्या होता है, सब कुछ वो करो जिससे अमृत वेला शक्तिशाली हो, यही पंच लाइन है कि है ना अमृत वेला शक्तिशाली होना ही चाहिए, उसके लिए जो करना है वो करना है। तो वह भोजन पर भी एक्सपेरिमेंट्स करके हम देख सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट है, सोने से पहले बाप दादा को सारे दिन का पोता में ना देने से नुकसान। याद रखना कि अगर किसी के प्रति भी स्वप्न मात्र भी लगाव हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वार्थ हो तो स्वप्न में भी समाप्त कर देना। कई कहते हैं कि हम कर्म में नहीं आते लेकिन स्वप्न आते हैं, लेकिन अगर कोई व्यर्थ व विकारी स्वप्न लगाव का स्वप्न आता है तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन में सोए। कई कहते हैं कि सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी स्वप्न आ गया, तो चेक करो सोने समय बाप दादा को सारे दिन का पोता मिल देकर खाली बुद्धि होकर के नींद की, ऐसे नहीं कि थके हुए आए और बिस्तर पर गए और सो गए, ये अलबेलापन है। चाहे विकर्म नहीं किया और संकल्प भी नहीं किया लेकिन ये अलबेलेपन की सजा है। क्योंकि बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप के हवाले करो और अपनी बुद्धि को खाली कर दो। दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो ना, तभी स्वप्न आते हैं। अगर बाप के साथ सो जाओ तो कभी भी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते। लेकिन फरमान को नहीं मानते हो तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह को उठकर के दिल में अरमान होता है ना कि मेरी पवित्रता स्वप्नों में खत्म हो गई, ये कितना अरमान है। कारण है अलबेलापन। तो अलबेले नहीं बनो, जैसे आया वैसे यहाँ वहाँ की बातें करते करते सो नहीं जाओ। समाचार तो बहुत होते हैं और दिलचस्प समाचार तो व्यर्थ ही होते हैं। कई कहते हैं और तो टाइम मिलता ही नहीं, जब साथ में एक कमरे में जाते हैं तो लेन देन करते, लेकिन कभी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोना नहीं, ये अलबेलापन है, ये फरमान का उल्लंघन करना है। अगर और टाइम नहीं है, जरूरी बात है, तो सोने वाले कमरे में नहीं लेकिन कमरे से बाहर 2 सेकंड में एक दो को सुनाओ, सोते सोते नहीं सुनाओ। कई बच्चों की तो आदत है, बाप दादा तो सभी को देखते हैं ना कि सोते कैसे हैं। 1 सेकंड में बाप दादा सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं और टीवी से देखते हैं कि सो कैसे रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, बाप दादा सब देखते हैं। तो जब आदि अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा। तो यहाँ पे विशेष बाबा यही बता रहे हैं कि सोने की विधि क्या है, ये बार बार हमने डिस्कस किया है। जो लोग किसी के साथ रहते हैं तो वो चर्चा करते करते सोते, ये तो बाबा ने बताया। लेकिन अब तो मोबाइल आ गए हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, सोने से पहले पूरा मोबाइल को चेक करते हैं, किसने व्हाट्सएप भेजा उसको रिप्लाई करते हैं, या दिन भर में हमारा कुछ मिस हो गया देखना वो देखते हैं, कोई वीडियो बाकी है देखना वो देखते हैं, है ना। तो ये सब भी तो किसी के साथ चैटिंग ही हो गई ना। अगर भले अकेले रहते हैं लेकिन ये सब करते करते सोते हैं, या किसी से फोन पर बात करते करते फिर सो जाते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि हम इसको तो मौन नहीं कहेंगे ना, जैसे वो मुरली चली थी शांति की शक्ति, तो हम सब डिस्कस कर रहे थे कि हम कब कब मौन रह सकते हैं। तो जैसे हम सोच रहे थे, देखो 1 से 3 के बीच में हमको रेस्ट का टाइम मिलता है, लेकिन वो वक्त भी हम मौन में नहीं होते, वो वक्त भी हम मोबाइल्स के साथ होते हैं, व्हाट्सएप के साथ होते हैं। तो कितना विशेष ध्यान देना पड़ेगा इस पर कि हम सोचते हैं कि हम तो किसी से बात नहीं करते, लेकिन आप वो सब जो पढ़ रहे होते हैं तो वो भी तो एक चीज है ना कि बुद्धि को कुछ ना कुछ मटेरियल मिल रहा होता है बार बार, तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और चार्ट लिखकर सोना चाहिए हमेशा, जैसे हम मधुमन में जो चार्ट आता है वो हम चार्ट लिखकर सो सकते हैं। एक हमने नई बात चालू की हमारी रात की क्लास में, हमने डिसाइड किया, जैसे बाबा ने कहा था ना कि विघ्न आते हैं तो विघ्न लगन बढ़ाने के लिए आते हैं, तो हम सब ने सोचा कि हम लोग चार्ट में अब ऐसे लिखेंगे कि आज के दिन कौन सा विघ्न आया, और अगर विघ्न आया तो वेरी गुड, और अगर विघ्न आया तो हमने उसमें कैसे रिएक्ट किया। ओके, अगर विघ्न आया तो मैं फेल हुई या पास हुई, ठीक है, अगर मैं फेल हुई पास हुई तो बहुत अच्छा, और अगर फेल हुई तो मैंने उस विघ्न से क्या सीखा। तो हमने अभी ये चार्ट लिखना चालू किया कि ना अगर विघ्न आते हैं तो कैसी स्थिति थी और उसमें क्या रिएक्शन था और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह से, तो जब हम ऐसा कुछ चार्ट लिखते हैं ना तो हमारी बुद्धि बहुत एकाग्र होती है और हम सिर्फ बाबा से रू रिहान कर रहे होते हैं उस समय, तो फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। और फिर एक बार बार ये लिखने के बाद एक आदत हो जाएगी कि रात में चार्ट देना है बाबा को, फिर बहुत अटेंशन रहेगा दिन भर। तो ऐसे कुछ पुरुषार्थ में नवीनता ला सकते हैं। और दूसरा एक और अलबेलापन आता है हमको, जब हमारी गंभीरता चली जाती है पुरुषार्थ की। जैसे सुशील भाई ने कहा था उस दिन कि अगर कोई प्रोग्राम में हमको नहीं जाना है तो हमारा इम्पोर्टेंस नहीं है कि हमको जाना ही है उधर, तो नहीं जाए ना, नहीं तो ऐसे ऐसे करते करते गंभीरता जो पुरुषार्थ की है वो कम होती जाती है। तो इस पर भी बहुत विशेष ध्यान देना है क्योंकि इसका भी प्रभाव अमृत वेला पड़ता है नेक्स्ट डे, तो ये ध्यान दे सकते हैं। जैसे एक बार हम एक फंक्शन में नहीं गए थे, तो कुछ टाइम पहले की बात है, हम बहुत गंभीर रहते थे, बहुत रिजर्व्ड रहते थे वो टाइम, तो हम नहीं गए, हम पहले साल गए थे, नेक्स्ट ईयर नहीं गए। हमको लगा ठीक है, देख लिया ना सब कुछ क्या होता है इधर। तो वो भाई आए और पूछे कि है ना क्या हुआ, आप आए नहीं? तो हमने कहा नहीं, वो थोड़ा काम था। तो बोले कि ऐसा थोड़ी ना चलेगा, क्या सतयुग में अकेले आना है? हाँ, परिवार के ऐसे थोड़ी ना है, परिवार है ये, परिवार के साथ सतयुग में आना है। तो लोग तो कुछ भी कमेंट्स करेंगे, लेकिन हमको ध्यान देना है कि हमको हमारे पुरुषार्थ में क्या करना है और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे वहां जाने से मेरी स्थिति अगर गिर जाती है तो बेटर कि मैं नहीं जाऊं वहां पर। तो ये सब चीजों का ध्यान देना है। इसलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए, जो हुआ वह योग की अग्नि में भस्म करो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आलस्य, अलबेलापन और अवज्ञा। तो इसमें विशेष बाबा ने कहा था, ऐसे ही माया भी उसी समय कमजोर बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ देती है और उनको तंग भी करती है, क्योंकि तंग करने का कारण है कि वे सारा दिन अलबेले और आलस्य के वश होते हैं और उनका अटेंशन कम होता है। ऐसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर ना चलने का बदला लेती है और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है। कई कई फिर ऐसे भोले बच्चे होते हैं जो कि ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते, निद्रा को भी शांत स्वरूप और बीज रूप स्टेज समझ लेते हैं। जैसे एक बहन को पूछा था, आपको बहुत नींद आती है, आप क्यों रेस्ट क्यों नहीं करते, आप नींद पूरी करके आओ ना। तो वो बोलती है कि मैं अपने विकर्म विनाश कर रही हूँ, उन्होंने ऐसा उत्तर दिया था। तो हमको तो एकदम वंडर लगा इस बात का। नहीं, वो तो अच्छा है, आ रहे, लेकिन है ना रेस्ट तो करना चाहिए ना। बाबा तो वो भी बोल रहे ना, कितनी नींद, वही तो ना, नींद आ रही है तो उसमें विकर्म कैसे विनाश हो रहे हैं, सब देख रहे ना उनको। नींद कर रही है ना वो, यहाँ वहाँ झूला झूल रहे। नहीं, आगे बैठते नहीं, कोई अपना योग छोड़ के किसी को नहीं देखता, लेकिन है ना अगर कोई आगे बाजू में बैठा वो गिर रहा पड़ रहा तो है ना, तो बुद्धि ये हमारा लक्ष्य रखे। सारे दिन में मनन चिंतन ना करना। अमृत वेला सुस्ती आने का कारण है, खुशी की पॉइंट्स का मनन कम करते हैं। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत वेला भी वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी तो सुस्ती नहीं आएगी। अमृत वेला को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में जो भी श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना बहुत आवश्यक है। तो सारा दिन मनन करते चलो, ज्ञान रत्नों से खेलते चलो। तो जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ नींद नहीं आती, जहाँ प्राप्ति नहीं वहाँ नींद आती व थकावट होती है व सुस्ती आती है। प्राप्ति के अनुभव में रहो, उसका कनेक्शन है सारे दिन के मनन पर। देखो कितना इम्पोर्टेंस दे रहे बाबा मनन चिंतन पर। हमने एक और प्रैक्टिस चालू की, जो हम लास्ट मधुबन का जो चार्ट था, फर्स्ट 14 डेज तो हमारे ऐसे ही चले गए थे, फिर हमको याद आया कि चार्ट बनाना। तो हम लोगों ने क्या किया, रात में हम क्लास के एंड में कुछ दिन हम भूल रहे अभी भी, स्वमान दे देते कि ये स्वमान की प्रैक्टिस करनी है। तो काफी भाई बहनों ने वो प्रैक्टिस करना चालू किया और विशेष फिर पूरा दिन भर ध्यान देते कि उस पर कुछ चिंतन करना है। कोई 21 बार उसका अभ्यास कर रहा है, कोई 7 बार, कोई 8 बार। एक बहन ने तो एकदम सुपर, वो बोल रही है कि अमृत वेला उठते साथ गुड मॉर्निंग भी नहीं, वो स्वमान याद आ रहा है उसको। तो इतना नशा चढ़ गया। तो कुछ ना कुछ मनन चिंतन करते रहना चाहिए पूरा दिन भर में। और जैसे ये सुस्ती का पॉइंट है, तो एक बात याद आ रही है, एक भाई ने कहा कि अगर विशेष योग नहीं लगता है ना तो मैं वो चीज करता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसको क्रिकेट खेलने बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है, सब कुछ बाबा से कनेक्शन करना है तो सूक्ष्म वतन में जाके बाबा के साथ क्रिकेट करता है, क्रिकेट खेलता है और ना बोलता है कि दादियों की फील्डिंग लगाता हूँ मैं, ऐसे करके अपना योग करता है बाबा के साथ। तो ऐसी अच्छी अच्छी मतलब है ना, हमने तो बोला कि बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी है ना इसमें भी, तो हर चीज आप बाबा से जोड़ रहे हो तो आपको नींद कहाँ से आएंगी फिर। हाँ, फिर ये दिनचर्या पे पूरा अटेंशन, दिन जैसे ये वैसे ही हो गया अगर दिनचर्या में पूरा अटेंशन देना और मनन करना दिन भर में। कुछ और विशेष पॉइंट्स थी। व्यर्थ की तरफ आकर्षण होने का कारण है अपनी मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो, मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। तो ये दिनचर्या पे अटेंशन की बात थी। ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा हमको। भाषण नहीं करना आता, कोई बात नहीं। सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती हो, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात ये धारण करो, क्या होगा बोलो? माता जी को याद है, दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करके देखो, एक दिन अमृत वेला से लेकर रात तक यही कार्य करो। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है और कुछ भी नहीं करो, लेकिन दुआएं दो और दुआएं लो। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी है। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति स्वतः ही आ जाएगी, तो ये भी अच्छा है। अमृत वेला अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान सेट करना है कि आज किस विशेष विषय पर व किस कमजोरी पर विशेष अटेंशन देकर इसकी परसेंटेज बढ़ावे। ये भी हमने एक देखा है कि अमृत वेला के बाद ना बाबा कहते हैं कि टाइम टेबल सेट करो। हम सेट करते हैं लेकिन 9 बजे तक वो टाइम टेबल ही भूल जाते हैं। तो हम सोच रहे थे कि क्या करें इसके लिए, टाइम टेबल भूल जाते हैं ना कि, तो दिन भर में ना अपने आप को देना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट 15 मिनट्स ये करना है, अभी नेक्स्ट 10 मिनट ये करना है। भले हम सब बिजी रहते हैं सेवा में, लेकिन हमको फिर भी टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम टेबल भी भूल रहे हैं हम। मतलब कितना हाँ वो भी कर सकते हैं। तो ये भी हमने सोचा था कि बीच में हमने चालू किया था कि ऐसे लिख दे कि क्या क्या करना है, ये पैराग्राफ पढ़ना है, ये टॉपिक पे चिंतन करना है, या ये ड्रिल्स करनी है, ये समा, और फिर उसको टिक मार्क करते जाने का जो जो होता गया। तो फिर भी शाम तक अच्छा लगता है कि कुछ तो किया। वरना अगर कुछ है, जैसे है ना बोल रहे ना मंजू बहन की, चिपका दो उसको ये करना है, सामने रहेगा ना कुछ तो फिर याद रहेगा, वरना तो इतनी आसानी से विस्मृति हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और इतना ऐसा लगता है फिर भी याद तो रहना चाहिए ना। बाबा से जब मिले वो सीन को प्रैक्टिस करो, इमर्ज करो। दृष्टि, बाबा की दृष्टि को याद करो। जैसे सेवा के प्लान बनाते हो, पर्चे छपवाते हो, टीवी रेडियो में प्रोग्राम देते हो, वैसे वह बाहर के साधन बनाते हो, वैसे पहले अपनी मनसा शक्तिशाली का साधन विशेष होना चाहिए। छोटी छोटी अवज्ञा मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ने नहीं देती। ये बहुत गुह्य बात है। इसमें बाबा ने कहा कि व्यर्थ की तरफ कैसे हमारी बुद्धि जाती है दिन भर, तो उस पर अटेंशन। और कुछ ये लास्ट पॉइंट, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। बाबा समझाते हैं इतवार का दिन छुट्टी है, सवेरे सवेरे दो संडे हॉस्पिटल वालों को सवेरे सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई की मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो, टाइम तो मिलता है ना। तो 2-3 घंटा मेकअप करने के लिए जिसको जिस दिन छुट्टी है वो कर सकते हैं 2-3 घंटा मेकअप। हाँ, कवर अप, कवर कर लो, मतलब है ना पूरा हफ्ता मिस हुआ है ना, तो 2-3 घंटा पूरा कर दो। वो नहीं है, एक और भी कहा बाबा ने कि सवेरे, एक और भी इसने कहा, भाषण लिखो, समझाने की प्रैक्टिस करो। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है तभी पॉइंट्स निकलेगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, देखो ये भी, फिर पढ़ना चाहिए, भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए। इससे धारणा भी अच्छी होगी और बुद्धि बिजी रहेगी ज्ञान का मंथन करने से, तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी रहेगी। तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए समझाने की। तो कितनी सारी ऑप्शंस है हमारे पास, जरूरी नहीं है कि एक ही चीज करनी है। अगर नींद आ रही है तो ये भी कर सकते हैं, लिखना चालू कर सकते हैं। और बस लास्ट पॉइंट, थकना नहीं है, कट निकलने में टाइम लगता है। है ना, दिलासा देने बाबा। कट निकलने में टाइम लगता है, रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े, परंतु बहुत बच्चे हैं जो सुबह को उठते नहीं है तो धारणा भी नहीं होती, सवेरे जागने की आदत पड़ जाए तो फिर देखो कैसे सर्विसेबल बन जाते हैं। तो ये कुछ विशेष पॉइंट्स इस बुक से लगी, तो वो आपके सामने पड़ा। ओके, ओम शांति।